हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म और फिल्म फेयर अवार्ड्स में लगभग सारे अवार्ड्स ले जाने वाली फिल्म का नाम है DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी। नेशनल अवार्ड भी मिला इस फिल्म को बेस्ट फिल्म फॉर प्रोवाइडिंग पॉपुलर एंड होलसम एंटरटेनमेंट। इस फिल्म ने 10 अवार्ड जीते थे, बेस्ट फिल्म यश चोपड़ा, बेस्ट डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस काजोल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फरीजा जलाल, बेस्ट कॉमेडियन अनुपम खेर, बेस्ट लिरिसिस्ट आनंद बख्शी, बेस्ट प्लेबैक सिंगर उदित नारायण, बेस्ट डायलॉग राइटर आदित्य चोपड़ा और जावेद सिद्दीकी, बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर आदित्य चोपड़ा। स्क्रीन अवार्ड्स में भी इस फिल्म को 2 अवार्ड मिले थे, वो था बेस्ट फिल्म यश चोपड़ा को एज अ प्रोड्यूसर और बेस्ट डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा को।
ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। मैं 22 बरस से यहां रह रहा हूं, रोजाना इसी सड़क से गुजरता हूं और रोजाना यह सड़क मुझसे मेरा नाम पूछती है। यह पूछती है कि चौधरी बलदेव सिंह कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है। अब मैं इसे क्या जवाब दूं? आधी उम्र गुजारने के बाद भी यह धरती मेरे लिए अजनबी है और मैं इसके लिए। यहां मुझे कोई नहीं जानता सिवाय इन कबूतरों के, क्योंकि ये भी मेरी ही तरह हैं। इनका भी कोई देश नहीं, जहां दाना देखा उतर गए और पेट भर कर उड़ गए। मैं कब उड़ सकूंगा मालूम नहीं। जरूरतों ने पर काट दिए हैं, रोटी पांव की जंजीर बन गई है, लेकिन कभी ना कभी मैं जाऊंगा जरूर अपने देश को, अपने पंजाब को।
इस गाने के साथ बलदेव अपनी यादों में खो जाता है। फिर वो अपने स्टोर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी लाजो है जो हर रोज फोन करके पूछती है बलदेव स्टोर पहुंचा या नहीं। सिमरन उसकी बड़ी बेटी और छुटकी छोटी बेटी है। सिमरन अपनी डायरी पढ़कर माँ को सुना रही है। उसका कहना है कि उसके ख्यालों में कोई लड़का आ रहा है। तभी स्क्रीन पर ये गाना आता है। गाने के दौरान उसे राज नजर आता है। वो बहुत ही तेज तर्रार है, हर बाजी जीतना जानता है, रईस खानदान से है और अपने पिता के साथ लंदन में ही रहता है। बाप और बेटे दोनों बड़े अजीब हैं। लड़का ग्रेजुएशन नहीं कर सका, फेल हो गया, इस पर बाप उसके साथ पार्टी कर रहा है। फिर उसे वो अपना ऑफिस ज्वाइन करने को कहता है तो राज कहता है वो यूरोप घूमना चाहता है। पहले तो उसके पिता ना कहते हैं मगर बाद में मान जाते हैं। इधर बलदेव के घर एक चिट्ठी आती है गांव से। बलदेव बहुत खुश होता है, उसे महसूस होता है कि उस चिट्ठी से उसकी देश की खुशबू आ रही है।
ओ लाजो!
जी जी जी।
ओ लाजो आदे क्या आया है? आदे लाजो, ओ चिट्ठी आई है मेरे यार दी।
अच्छा,
ओ अजीत दी चिट्ठी है।
अच्छा, अच्छा।
ओ पागा भरिए, जरा सुन के देख। आ रही है ना पंजाब की खुशबू। ओ सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी, ओ कुर्ता लंबा मेरी वोटी छोटी, ओ सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी।
चिट्ठी उसके बचपन के दोस्त अजीत ने भेजा है और उसका कहना है कि जो वादा सालों पहले हुआ था उसे निभाने उसे आना है, यानी सिमरन और कुलजीत की शादी करवानी है। कुलजीत अजीत का बेटा है। सिमरन और कुलजीत की शादी बचपन में ही तय की गई थी। इत्तेफाक से सिमरन की सहेलियां भी यूरोप जाने का प्लान बनाती हैं, पर लाजो कहती है कि उसके पिता कभी राजी नहीं होंगे। एक तो वो अकेले और ऊपर से एक महीने के लिए यूरोप जाने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। सिमरन घर पे बलदेव का इंतजार कर रही है और दुआ करती है कि उनका मूड ठीक हो। पर वहाँ स्टोर में राज अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है। जब बलदेव राज के दोस्तों को बियर देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो अपना शॉप बंद कर चुके हैं, तो राज वहाँ आके एक हिंदुस्तानी बन के डिस्प्रिन की गोली मांगता है और धोखे से बियर की बोतल ले जाता है और जाते जाते पैसे फेंकते हुए कहता है कि कीप द चेंज। बलदेव उसके इस झूठ और फरेब से बहुत नाराज होते हैं। रात को डर से सिमरन कुछ नहीं पूछती, पर सुबह आरती के बाद पिता का मूड अच्छा देखकर वो यूरोप टूर पर जाने के लिए कहती है।
इतनी छोटी सी थी जब तुझे लेकर आए थे यहाँ, और अब देखो तो लोग कहते हैं कि बेटी जब जवान हो जाए तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन बेटी तेरे जैसी हो तो बाप के कंधे झुकते नहीं बल्कि गुरूर से छाती और चौड़ी हो जाती है। मेरी अच्छी वाली बच्ची है तू।
पाउजी,
हाँ,
मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप दोगे?
जो मांगना है मांग बेटा।
पाउजी, मुझे यूरोप देखना है।
यूरोप?
यूरेल का एक महीने का टूर है, मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं। आप नाराज मत होइए बाऊजी, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं डाली है। बाऊजी, मैं एक ऐसे देश में जा रही हूं जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिससे मेरी शादी होने वाली है वो बिल्कुल अजनबी है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है बाऊजी। आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन बाऊजी मुझे ऐसा चांस फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं, ये दोस्त फिर मिलेंगे या नहीं, और बस एक ही महीने की तो बात है बाऊजी। इस एक महीने में मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगी। क्या आप मेरी खुशी के लिए मेरी अपनी जिंदगी से मुझे एक महीना भी नहीं दे सकते? प्लीज बाऊजी, मुझे एक महीना दे दीजिए। प्लीज
जा, जी ले अपनी जिंदगी।
स्टेशन पर राज और सिमरन दोनों ही अलग अलग लेट हो जाते हैं। उनके पहुंचते ही ट्रेन छूट जाती है। राज ट्रेन में चढ़ जाता है और दौड़ते हुए सिमरन का हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है। अंदर ट्रेन में राज सिमरन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो कि सिमरन को बिल्कुल पसंद नहीं।
ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। रॉबी की पार्टी पे नहीं?
मैं पार्टी नहीं जाती।
बहुत अच्छा करती, मैं भी कभी नहीं जाता। आई डोंट लाइक देम एट ऑल। ये जो आपकी आंखें हैं,
क्या हुआ मेरी आंखों को?
मुझे किसी की याद दिलाती है।
अच्छा, किसकी?
मेरी दादी, उनकी भी आंखें बिल्कुल आप की तरह थोड़ी सी पीली, थोड़ी सी नीली।
देखिए, प्लीज लीव मी अलोन।
Okay, I don't mind. I mean, it's all right with me. पढ़ते रहिए, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उल्टी किताब आप पढ़ते कैसे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल, आप पढ़ते रहिए प्लीज।
अब बहुत हो चुका है, ओके?
रिलैक्स, मैं यहाँ बैठा रहूँगा।
तुम यहाँ हो?
हेलो,
हाय
राज।
हमने तो सोचा तुमने ट्रेन मिस कर दी।
नहीं नहीं, मैं तो चढ़ गया था।
हम तो डर गए थे।
वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
शीना।
शीना, मैं यहाँ हूँ।
आओ
चलें।
अरे आराम से बैठकर। अलाउ मी।
तभी वहाँ सिमरन की एक दोस्त आ जाती है जो राज की तरह फ्लर्ट करना पसंद करती है। सिमरन उसके साथ चली जाती है। राज भी अपने दोस्तों के पास आ जाता है। पेरिस में एक पार्टी होती है जहाँ एक बोरिंग सा गाना चल रहा है। सिमरन अपने सारी सहेलियों के साथ वहाँ बैठी है। तभी राज अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है। राज सिमरन की फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और जोश में आगे कह देता है कि वो पियानो बहुत अच्छा बजाता है। फिर क्या था, सिमरन पार्टी में अनाउंस कर देती है कि राज यहाँ परफॉर्म करेगा।
मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज?
ये आवाज कुछ सुनी सी लगती है।
वी हैव अमंगस्ट अस टुनाइट अ वेरी ग्रेट पियानो प्लेयर एंड ही वुड लाइक टू प्ले समथिंग फॉर अस। प्लीज वेलकम मिस्टर राज।
राज सबके सामने मजाक बन जाता है, पर जैसे ही सिमरन घूमती है वो बहुत ही खूबसूरत पियानो बजाना शुरू करता है। राज सिमरन को छेड़ता है और स्क्रीन पर ये गाना आता है।
रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा।
अगले दिन राज सिमरन का फिर मजाक बनाता है, उसे एक गुलाब का फूल देता है। जैसे ही वो उसे अपने मुंह के पास लाती है उसे पानी निकल जाता है। दोनों को ही शाम को ट्रेन पकड़ना है, पर यहाँ भी राज उसे छेड़ता है। वो एक घंटी खरीदने जाती है और राज वहाँ उसके साथ छेड़खानी करता है और इसमें देर हो जाती है और ट्रेन छूट जाती है। सिमरन उससे बहुत नाराज होती है और दूर रहने को कहती है और अकेले ही रास्ते पर खड़ी हो जाती है, जहाँ दो पुलिस वाले आकर उससे पासपोर्ट मांगते हैं। राज उसे बचा लेता है ये कहकर कि वो उसकी वाइफ है। फिर दोनों कार में चल पड़ते हैं। रास्ते में कार खराब हो जाती है और पैदल जाते हुए सिमरन अपने बारे में राज को सब कुछ बताती है।
I'm sorry.
क्या कहा आपने?
I'm sorry. मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया।
कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
ये सेनोरिटा सेनोरिटा क्या लगा रखा है?
मेरी पहली गर्लफ्रेंड स्पेन की रहने वाली थी।
क्यों छोड़ दिया उसने?
उसे हिंदुस्तानी पसंद नहीं थे। आपको तो हिंदुस्तानी पसंद है ना?
ज्यूरिख कब पहुंचेंगे?
अरे ज्यूरिख में क्या रखा है, असली यूरोप तो ये है। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, कभी कभी तो डर लगता है मेला ना हो जाए। आप यहाँ पहली बार आई हैं?
हाँ।
गुड गुड, वेरी गुड।
आप जरा तेज चलाएंगे?
जल्दी क्या है सेनोरिटा, ट्रेन कल सुबह 11:30 बजे ज्यूरिख से निकलेगी, तो हमारे पास पूरी रात और आधा दिन है, आराम से पहुंच जाएंगे।
लेकिन फिर भी अगर हम...
रिलैक्स रिलैक्स सेनोरिटा, जो होना था वो हो गया, अब आप मेरे साथ हैं, अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। यूरोप वैसे पैदल ज्यादा अच्छा लगता है।
बस हम चारों ही हैं। चुटकी उसकी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ी है। और माँ फ्रेंड ज्यादा माँ कम,
इसलिए किसी दोस्त की कमी महसूस ही नहीं हुई।
अब सारी उम्र तो दोस्तों के सहारे गुजारी नहीं जा सकती ना सेनोरिटा, कभी ना कभी एक ऐसे साथी की जरूरत तो होगी जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ चलता रहे।
मैं और नहीं चल सकती, बहुत थक गई।
तो क्या करूं, तुम्हें उठा के ले जाओ। देखो भाई, अब होटल के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा करते हैं, सामने वाले घर में चलते हैं, वहां पर पूछते हैं, हो सकता है वहां पर रहने के लिए जगह मिल जाए। चलो चलो चलो।
रात काटने के लिए राज एक अच्छे से घर का इंतजाम करता है, पर कमरा एक होने की वजह से सिमरन वहां नहीं रहना चाहती और वो जाकर एक तबेले में रहती है। राज भी वहां पहुंच जाता है, उससे सॉरी कहता है, उसे खाना खिलाता है। राज मैंडोलिन पर एक धुन बजाता है। ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से सिमरन को ड्रिंक लेने को कहता है पर वो नहीं मानती। पर अचानक राज की जब आंख खुलती है तो वो देखता है सिमरन के हाथों में बॉटल है और वो दौड़ रही है, यानी नशे में वो चूर हो गई है, और नशे में दोनों मिलकर ये गाना गाते हैं।
जरा सा झूम लूं मैं,
अरे नारे नारे ना,
जरा सा घूम लूं मैं,
अरे नारे नारे ना,
आ तुझे चूम लूं मैं,
अरे नारे बाबा ना,
मैं चली।
रब्बा मेरे मैनु बचा,
जरा सा झूम लूं मैं,
अरे नारे नारे ना,
जरा सा घूम लूं मैं,
अरे नारे नारे ना,
आ तुझे चूम लूं मैं,
अरे नारे बाबा ना,
मैं चली।
अगले दिन सुबह सिमरन की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एक होटल के कमरे में है, राज भी वहाँ है। सिमरन के बदन पर राज की शर्ट है, वो बिल्कुल घबरा जाती है। राज भी उसके साथ मजाक करता है और कहता है कल रात कुछ हुआ है, पर बाद में जब वो रोना शुरू करती है तो बताता है कि वो एक हिंदुस्तानी है और वो कोई भी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। सिमरन उससे लिपट जाती है। दोनों ट्रेन पकड़ने जाते हैं और राज सिमरन को बताता है कि उसे कैसी लड़की चाहिए। तभी उसे पता चलता है कि सिमरन की शादी तय हो चुकी है। सारे दोस्त आपस में फिर मिल जाते हैं। राज सिमरन को अकेले में मिलता है और कहता है वो उससे प्यार करने लगा है, उसके हाथों में अभी भी वही मैंडोलिन है। सिमरन बहुत गंभीर सोच में पड़ जाती है तो हंसते हुए राज कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था, उसका मैंडोलिन अब भी उसके साथ है। फिर राज उससे पूछता है कि अगर सच में उसे उससे प्यार हो जाए तो क्या वो उस अनजान लड़के को चुनेगी या फिर राज को। सिमरन कहती है कि इस बार भी वो ट्रेन मिस करना नहीं चाहती। ट्रेन में दोनों वापस जाते हैं। स्टेशन पर अलग होते समय दोनों के पास ज्यादा बातें नहीं होती, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो पूछती है कि राज उसकी शादी में आएगा, राज ना कह के चला जाता है। स्क्रीन पर ये गाना आता,
ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया।
सिमरन घर वापस आके अपनी माँ से कहती है उसे लगता है कि उससे प्यार हो गया है और वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। तभी वहाँ बलदेव आ जाते हैं और कहते हैं सिमरन सामान बांध लो, कल सुबह हम लोग इंडिया जा रहे हैं और वो भी हमेशा के लिए। उधर राज भी उदास है, वही धुन बजा रहा है। उसके पिता उसके पास बैठे हैं, वो अपने पिता को पॉप्स कहता है तो पॉप्स कहते हैं कि अगर सिमरन पसंद है तो मुश्किल क्या है, राज कहता है उसकी शादी तय हो चुकी है। तो पॉप्स कहते हैं कि दुल्हन उसी की होती है जो उसे डोली में उठा कर ले जाता है, और कहते हैं कि वो जाए और वापस तभी आए जब उसके साथ सिमरन हो। राज जब उसके घर पहुंचता है तो पता चलता है कि सिमरन वापस इंडिया चली गई है। पर राज को दरवाजे पर वही घंटी मिलती है जो सिमरन ने यूरोप टूर के दौरान खरीदी थी।
मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।
इधर इंडिया में पूरे परिवार से मिलके सब लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सिमरन और चुटकी को कुलजीत पसंद नहीं है। रात को सिमरन के कानों में वही धुन सुनाई देती है जो राज बजाता है। वो बेचैन हो जाती है। तभी लाजो आके उसे समझाती है कि औरत होने का मतलब है समझौता। पर उसकी माँ कहती है कि वो सिमरन को समझौता नहीं करने देगी। उसने ऐसा सोचा था पर ऐसा हो ना सका। वो राज को भूल जाए, उसके पिता उसके आंसुओं की कदर नहीं करेंगे। सिमरन माँ से वादा करती है कि वो किसी से अब कुछ नहीं कहेगी। शादी की पहली रस्म चल रही है। सिमरन के कानों में फिर वही धुन बजने लगती है। शाम को सब मिलके गाना गाते हैं। देर रात सिमरन के कानों में एक बार फिर वही धुन सुनाई पड़ती है। वो देखती है राज उसके सामने खड़ा है। वो जाके राज के गले लग जाती है। स्क्रीन पर ये गाना आता है।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी
जाना सनम।
गाने के बाद सिमरन राज से कहती है कि वो उसे भगा कर ले जाए, पर राज नहीं मानता।
तुम मुझसे प्यार करती हो?
सबसे ज्यादा।
मुझ पर भरोसा है?
खुद से ज्यादा।
तो जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। आज से तुम और मैं अजनबी हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे। वापस उस घर में चली जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे हमारे प्यार पर पूरा भरोसा है। मगर सिमरन, मैं इस रास्ते पर अकेला नहीं चल सकता। तुम्हें मेरी ताकत बनकर मेरे साथ साथ चलना होगा। बोलो, तुम दोगी मेरा साथ? और एक बात याद रखो, मैं यहां पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं, और जब तक तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी नहीं हो जाती, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं।
राज एक चाल चलता है, कुलजीत की जान बचाने का झूठा खेल खेलता है। इस तरह से उसका दोस्त बन जाता है और सीधे उसके घर पहुंच जाता है। हालांकि कुलजीत ही उसे अपने घर पे रहने को फोर्स करता है, क्योंकि राज कहता है कि वो यहाँ एक बियर की फैक्ट्री लगवाने आया है। घर वाले उसकी बहुत आवाभगत करते हैं। जाहिर है उसने कुलजीत की जान बचाई है। कुलजीत की बहन उसे पसंद करने लगती है। शादी के माहौल में राज सबसे घुल मिल जाता है। अगले दिन सुबह कबूतरों को खेतों में खिलाते वक्त, दाना डालते वक्त राज बलदेव से मिलता है, पर कुछ कह नहीं पाता। कुलजीत उसे शिकार पर ले जाना चाहता है, राज तबीयत खराब का बहाना बनाकर टाल देता है। सिमरन की दादी के साथ सब मिलके गाना गाते हैं। सिमरन के कहने पर राज भी गाना गाता है, पर भूले से वो कुलजीत की बहन का हाथ पकड़ लेता है। सिमरन भी गाना गाती है, राज आखिर में गाता है, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सगाई की रस्म अदा की जा रही है, पर सिमरन के हाथों में बैंडेज है। वो कहती है कि चूड़ी से उसकी उंगलियां कट गई है, इसलिए दो उंगलियों पर उसने बैंडेज लगाया है। तो कुलजीत के पिता उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, वो उसके दूसरे हाथ की उंगली में अंगूठी पहना दे। खुशी के माहौल में सभी मिलकर ये गाना गाते हैं।
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना।
मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना।
अजीत और उसकी पत्नी राज को पसंद करने लगते हैं। वो राज को बुलाते हैं और कहते हैं कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। राज कहता है कि ये फैसला पॉप करेंगे। राज के पिता अचानक पंजाब पहुंच जाते हैं। कंफ्यूजन में वो राज की शादी अजीत की बेटी से ही तय कर बैठते हैं। वो समझते हैं कि अजीत ही सिमरन के पिता हैं। रात को इसी बात पर राज और उसके पिता में नोकझोंक हो जाती है। वो कहते हैं वो उसे बहुत मिस कर रहे थे। दोनों भावुक हो जाते हैं और पॉप्स कहते हैं कि बिल्कुल मत घबराओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। छत पे राज सिमरन से मिलता है। सिमरन कहती है कि कल कड़वा चौथ है और वो कल पहला पानी और पहला निवाला राज के हाथों से ही खाएगी।
देखो सिमरन, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो साफ साफ कह दो, मैं चुपचाप से यहाँ से चला जाऊंगा। फिर तुम शौक से कुलजीत से शादी कर लेना। अरे ये रोज रोज के ड्रामे से तो मुझे छुटकारा मिलेगा ना।
मैंने ऐसा क्या कह दिया?
अरे नहीं नहीं, तुम तो कभी कुछ नहीं कहती, नेवर। मैं चाहती हूँ कि पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला मैं तुम्हारे हाथ से लूं। अरे पागल हो गई क्या? मैं सबके सामने आऊंगा और कहूंगा, हाय सिमरन, मैं तुम्हारा होने वाला पति देव हूँ, ये लो पानी पी लो।
मैं कुछ नहीं जानती, मैं भूखी मर जाऊंगी मगर पानी का पहला घूंट और खाने का पहला निवाला तुम ही से लूंगी, समझे?
लिसन टू मी सिमरन, सिम
सिमरन जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है और मौके का फायदा उठाकर राज उसके मुंह में पानी डाल देता है। रात को छत पे चुटकी और सिमरन राज का इंतजार कर रहे हैं। राज आता है और फिर दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। लाजो ये सब देख लेती है। वो दोनों को अंदर लेकर आती है। राज से कहती है वो सिमरन को ले जाए, पर राज कहता है वो सिमरन को तभी ले जाएगा जब बाबूजी उसका हाथ खुद देंगे। अगली सुबह कबूतरों को दाना देते वक्त राज बलदेव को मना लेता है। शाम को दादी यानी बलदेव की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और शादी एक हफ्ते की जगह कल ही होना तय हो जाता है। सिमरन अपने कमरे में बैठी है और राज की तस्वीर देख रही है। तभी मेहंदी का बुलावा आ जाता है और फोटो वहाँ से उड़कर बलदेव के हाथ में पड़ जाती है, जिसमें राज और सिमरन दोनों हैं। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। बलदेव राज को मारना शुरू करते हैं। तभी सिमरन आके कहती है कि उसने पहले ही कहा था कि उन्हें भाग जाना चाहिए।
अपनों से हम भाग कर जाते भी तो कहां जाते? ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, ये पूरी जिंदगी हमको पालते हैं, पोसते हैं, हमको ढेर सारा प्यार देते हैं। ये हमारी जिंदगी के फैसले हमसे बेहतर कर सकते हैं। हमको कोई हक नहीं पहुंचता कि हम इनको दुख पहुंचाकर अपनी खुशियों के महल खड़े करें।
बलदेव को उसकी अमानत सौंप कर राज स्टेशन चला जाता है, जहां उसके पॉप उसका इंतजार कर रहे हैं। उससे पूछते हैं कि वो सिमरन को लेकर क्यों नहीं आया। राज कहता है बाबूजी उसे खुद लेकर आएंगे। तभी कुलजीत बंदूक लेके वहां आता है अपने दोस्तों के साथ। वो राज को बहुत मारता है। सभी लोग स्टेशन की ओर भागते हैं। लाजो भी सिमरन को लेकर आती है। बलदेव आकर लड़ाई को रोकते हैं। तभी ट्रेन आ जाती है। राज और उसके पॉप्स ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। ट्रेन चलने लगती है। सिमरन भागना चाहती है पर बलदेव उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। अचानक तड़पती हुई सिमरन का हाथ बलदेव छोड़ देते हैं और कहते हैं, जा अपनी जिंदगी जी ले, राज से ज्यादा तुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता। सिमरन ट्रेन की ओर भागती है और राज उसे ऊपर की ओर खींच लेता है। और इस तरह से ये कहानी यहीं खत्म होती है।